साकला फाउंडेशन नई दिल्ली के कार्यों पर आधारित अरपा कम्युनिटी रेडियो द्वारा एक रेडियो रिपोर्ट। भारत में वृद्धावस्था, चुनौतियां और अवसर। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2030 तक हर 6 में से एक व्यक्ति 60 या उससे अधिक उम्र का होगा। हालांकि लोग बुढ़ापे को सिर्फ नंबर ही मानते हैं, उम्र को लेकर नज़रिया जानने के लिए अमेरिकी रिसर्च एजेंसी एप्सॉस ने 32 देशों में सर्वे किया है। इसमें भारत के 37% लोगों ने कहा है कि वे बुढ़ापे को लेकर उत्साहित हैं। 56% ने कहा है वे मौजूदा पल को जी रहे हैं। सबसे अधिक इंडोनेशिया के 89% लोगों ने कहा है कि बुढ़ापा बहुत खास होगा। बुढ़ापे की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो इटली में इसकी उम्र 73 साल और भारत में 63 साल। 2018 में 62 साल का बुढ़ापा माना जाता था, लेकिन 2025 में लोगों ने ये उम्र 63 ही बताई। कोलंबिया में पहले 71 पर बुढ़ापा माना जाता था, पर अब 62 पर मानने लगे। जर्मनी में उल्टा हुआ, पहले 62 मानी जाती थी, अब 69 मानने लगे। ये तो एक सर्वे के आधार पर आंकड़े थे, लेकिन आज हम बातें करने वाले हैं बुढ़ापे को लेकर क्या चुनौतियां होती हैं और क्या अवसर होते हैं भारत देश में।
पर सुख चली है नदी उम्र की, घट में लगा सांस का पानी, देह शिथिल है लेकिन मन में सपनों की बारात वही है, सपनों की बारात वही है, देह शिथिल है लेकिन मन में सपनों की बारात वही है, सपनों की बारात वही है।
वृद्धावस्था एक जीवन का चरण है जिसमें व्यक्ति की उम्र बढ़ने के साथ साथ शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। भारत में वृद्धावस्था के बारे में कई पहलू हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। वृद्धावस्था के साथ साथ वृद्धों को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वृद्धावस्था में स्वास्थ्य समस्याएं आम हैं। वृद्ध लोगों को अक्सर सामाजिक अलगाव का सामना करना पड़ता है। आर्थिक सुरक्षा की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, खास तौर पर तब यदि वे सेवानिवृत्त हो गए हैं। बहुत सारी सरकारी योजनाएं वृद्धावस्था के लिए सरकार ने शुरू की हैं, लेकिन परिवार के सदस्यों का समर्थन वृद्ध लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सामुदायिक सेवाएँ जैसे वृद्धाश्रम और डे केयर सेंटर वृद्ध लोगों को सामाजिक समर्थन प्रदान करते हैं। वृद्धावस्था पेंशन योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, कल्याण साथी योजना, सरकारी योजनाओं के साथ साथ कुछ सरकारी पहल और हैं जैसे राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम, अटल पेंशन योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, वृद्धों के लिए एकीकृत कार्यक्रम। ऐसा कहा जाता है और आंकड़े भी ये कहते हैं कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती हैं, जिससे अधिक वृद्ध महिलाएं अकेली हो जाती हैं और परिवार के सहयोग पर निर्भर रहती हैं। ये बातें तो हुई वृद्धावस्था में होने वाली चुनौतियों के बारे में और सरकारी पहल के बारे में, लेकिन अगर बात अवसरों की जाए तो वृद्ध लोगों के अनुभव और ज्ञान का उपयोग करके प्रभावी और लक्षित नीतियों को विकसित किया जा सकता है। वृद्ध आबादी के लिए वस्तुओं और सेवाओं का बाजार बढ़ रहा है जो उनके जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य और वित्तीय कल्याण को बढ़ाने के लिए नए अवसर प्रदान करता है। स्व सहायता समूह होते हैं जो वृद्धों के लिए स्थापित होते हैं। सामुदायिक सहभागिता, संसाधन साझाकरण और सामाजिक आर्थिक कल्याण को बढ़ावा मिल सकता है।
ओ सपनों का बादल तुझे बुलाए, जीने की ख्वाहिश को ये झुलाए, तेरा हर कदम जो खुददारी का हो, कैसे मैं ये सफर सोने पे सुहागा हूँ।
1 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में सांकला फाउंडेशन द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, भारत में वृद्धावस्था, उभरती वास्तविकताएं, विकसित होती प्रतिक्रियाएं। यह सम्मेलन वृद्धावस्था को एक अवसर के रूप में पुनः परिभाषित करने का प्रयास था और देशों तथा राज्यों में प्रचलित नवोन्मेषी कार्यक्रमों और नीतियों का अन्वेषण करने की एक कोशिश थी, जिससे इन्हें और अधिक समावेशी बनाया जा सके। भारत की वृद्ध जनसंख्या 2011 से 2025 के बीच 104 मिलियन से बढ़कर 347 मिलियन होने का अनुमान है। ये कुल जनसंख्या का 20.8% है 1911 की जनगणना के अनुसार। बुजुर्ग आबादी की ओर ये जनसांख्यिकीय बदलाव उनके अधिकारों की रक्षा करने और समग्र कल्याण सुनिश्चित करने के लिए निरंतर ध्यान और कार्रवाई की मांग करता है। बुढ़ापा केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, ये एक सामाजिक, आर्थिक और मानव अधिकारों का मुद्दा है। दक्षिणी राज्यों में बुजुर्गों की उच्चतम प्रतिशतता देखी जाती है। दक्षिणी राज्यों में बुजुर्गों की संख्या सारे देश की तुलना में सबसे ज्यादा है, जिसके कारण वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है। केरल में बुजुर्गों का प्रतिशत सबसे ज्यादा 12.6% था 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके बाद तमिलनाडु का 10.4% था और देश के अन्य हिस्सों के राज्य भी बुजुर्ग आबादी की ओर इसी तरह के बदलाव का अनुभव कर रहे हैं। भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश में वृद्धों की संख्या 7.7% है, जबकि अनुसूचित जनजातीय बाहुल्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 7.8% जनसंख्या 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की है। दादरा और नागर हवेली में केवल 4% लोग ही वृद्ध हैं। भारत में वृद्ध व्यक्तियों को कई प्रकार की असुरक्षाओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें सामाजिक और वित्तीय बहिष्करण, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच और समाज में सार्थक भागीदारी के अवसरों की कमी शामिल है। ऐसी निर्भरता अक्सर दुर्व्यवहार और भेदभाव का कारण बन जाती है। 70% से अधिक वृद्धों को अपनी मौलिक आवश्यकताओं के लिए अपने परिवार या पेंशन पर निर्भर रहना पड़ता है।
कठिन है अगर रास्ता तू फिकर ना कर, उड़ने की कोशिश में निकल आएंगे पर।
भारत में माता पिता के अपने बच्चों के साथ रहने की परंपरा ने बुजुर्गों को एक प्रकार का समर्थन और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है, लेकिन ये धीरे धीरे बदल रही है क्योंकि छोटे परिवारों की अवधारणा बढ़ रही है। इससे न केवल वित्तीय सुरक्षा हुई है बल्कि एक तरह का भावनात्मक संकट भी उत्पन्न हुआ है। भारत के बुजुर्गों को गैर संचारी रोगों का भी बोझ झेलना पड़ता है, जिसमें बुजुर्ग आबादी का 1/5 हिस्सा कम से कम एक दीर्घकालिक स्थिति जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप या यहाँ तक कि शारीरिक विकलांगता की रिपोर्ट करता है। 30% से अधिक लोगों में अवसाद संबंधित विकार पाए जाते हैं, जिनमें से 8% में संभवतः गंभीर अवसाद होता है। केवल 17-18% वरिष्ठ नागरिकों के पास स्वास्थ्य बीमा है। भारत में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक, विधायी और नीतिगत उपायों का एक स्थापित ढांचा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय प्रमुख मंत्रालय के रूप में कार्य करता है, जो बाकी सभी पहलों का नेतृत्व करता है और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय करता है। ये मंत्रालय का एकीकृत कार्यक्रम है बुजुर्ग लोगों के लिए। ये एक पहली लक्षित नीति थी जो संस्थागत देखभाल और सहायता सेवाओं पर केंद्रित थी। बुजुर्गों के लिए ये राष्ट्रीय नीति 1999 के साथ और अधिक उन्नत हुई, जिसने बुजुर्गों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एक अधिक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित कई अन्य मंत्रालयों ने बुजुर्गों के स्वास्थ्य, पोषण, वित्तीय सुरक्षा, रोजगार और आवास आवश्यकताओं को संबोधित करने वाली विभिन्न नीतियाँ लागू की हैं। वृद्धों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPHCE वृद्ध होती आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करता है। हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लोगों के लिए 5 लाख रुपए की कवरेज प्रदान करने के लिए बढ़ाना, वृद्धों के बीच स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित वित्तीय असुरक्षा को कम करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। वृद्ध माता पिता के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी सुरक्षा 2007 के माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण अधिनियम के तहत प्रदान की गई है। हालांकि इन प्रावधानों, व्यवस्थाओं और सुविधाओं के कार्यान्वयन और उपयोग में कई खामियां रही हैं, जिन्हें तुरंत संबोधित करने की आवश्यकता है। साकला फाउंडेशन द्वारा आयोजित ये सम्मेलन विभिन्न हितधारकों जैसे सरकार, निजी क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थान, नागरिक समाज के बीच संवाद को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है, ताकि आयु समावेशी पहलों का विकास किया जा सके और भारत तथा विश्व स्तर पर उपलब्ध प्रभावशाली सर्वोत्तम प्रथाओं और शोध को प्रदर्शित किया जा सके, जिन्हें स्वास्थ्य सेवा, अर्थव्यवस्था और डिजिटल समावेशन में हस्तक्षेप को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जा सके। साकला फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट, जिसका शीर्षक है भारत में वृद्धावस्था चुनौतियां और अवसर, इस अवसर पर जारी की गई।